अष्टपाहुड लेक्चर नंबर 7 ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सौवसाहूणं
कावूणनमोकारं जिनवरवसहस्रवर्धमानस दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेन।
यहाँ पर दो बातें हो रही थी। देखो, निश्चय और व्यवहार की बात चल रही थी। तो कहते हैं निश्चय से धर्म तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उसको चार प्रकार से निरूपण किया गया है। और वह जो अलग अलग जुदे जुदे प्रकार से जो कथन होता है उसको कहते हैं वह व्यवहार का वचन है। ये बात चल रही थी। तो वहां पर हमने देखा था कि आखिर में कि जो व्यवहार होता है, यानी क्या व्यवहार का कथन होता है। पेज नंबर 38 निकालो आप। वहां बीच में लिखा है इस प्रकार दो प्रकार का व्यवहार कहा। तो दो प्रकार का कौन सा था? तो कहते हैं प्रयोजनवश, यानी किसी न किसी उद्देश्य से, हेतु से एक देश को सर्वदेश रूप कहना। अभी यो एक देश क्या है और सर्वदेश क्या है इसको हम समझेंगे। चलो पीछे। देखो पेज नंबर 37 पर बीच वाला जो पैराग्राफ है उसमें तीन तीन छः और सातवीं लाइन है। सातवीं लाइन के ऊपर की भी लाइन पढ़ लेते हैं, पांचवे से लास्ट। मुनि दशा में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से आत्मा का आनंद तो प्रकट हुआ है, वह तो सर्वदेश रूप। उसका अर्थ क्या किया? यथार्थ रूप से धर्म है, यानी स्वरूप में लीनता जो है उसको यथार्थ धर्म कहा, निश्चय धर्म कहा, उसी को सर्वदेश धर्म कहा, सर्वदेश रूप। और वहां 28 मूल गुणादि जो शुभ राग होता है उसे, यानी शुभ राग को एक देश कहा, उसी का अर्थ क्या कहा? उपचार से उसको धर्म कहा, यानी जो धर्म नहीं है लेकिन उसको धर्म कहना यह उपचार है। और वह शुभ भाव जो है उन शुभ भावों को भी धर्म कहने में आता है।
देखो सर्वत्र एक देश का अर्थ पार्शल करते हैं, परंतु यहाँ लिखा एक देश अर्थात उपचार से। जहाँ एक देश धर्म कहा है उसी का अर्थ है उपचार धर्म है, यानी उपचार से धर्म कहा है। कथन में उपचार होता है, धर्म में कोई उपचार नहीं होता है। उपचार ये कथन में उसको धर्म कहना, ये उपचार हुआ, उसी को एक देश धर्म कहा। यानी उपचार से धर्म कहो या एक देश धर्म कहो एक ही बात है। हमेशा हम एक देश चारित्र का अर्थ क्या कहते हैं? थोड़ा है, पार्शल, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं लेना। ऊपर की लाइन में देखा सर्वदेश रूप अर्थात यथार्थ रूप, और दो लाइन, एक लाइन नीचे लिखा एक देश अर्थात उपचार से, ये ख्याल में लेना बात।
यहाँ पर ये उसकी विशिष्ट तरीके से उसका अर्थ कराया है। यानी यहाँ जब सर्वदेश रूप कह रहे हैं तो वह तो यथार्थ धर्म, यानी क्या स्वरूप में लीनता रूप जो है उसको, जो वितरकता मुनि योग्य है उनको यहाँ सर्वदेश रूप धर्म कहा। और जो स्वरूप में लीनता नहीं है उसके साथ में रहने वाला शुभ राग है, कौन सा? 28 मूल गुण पालन करने का, उसको उपचार से धर्म कहा और उसी को एक देश रूप धर्म कहा। अभी यहाँ क्या बता रहे, उसी के साथ में 36 पेज में एक लाइन में पढ़ाना चाहता हूँ आपसे। ये नंबर 3 लिखा है ना, मिल गया 36 पेज पर, तीन नंबर 1, 2, 3 लिखे हैं। तो निश्चय से धर्म एक ही प्रकार है, निश्चय नय से धर्म एक ही प्रकार है, व्यवहार नय से धर्म की प्ररूपणा अनेक यानी यहाँ 4 प्रकार से की गई है।
यानी कथन में प्रकार है, धर्म तो एक ही है, प्ररूपणा का अर्थ होते क्या है?
अभी हम पेज नंबर हो गया आपका,
भेद करके कथन करना।
अभी हम पेज नंबर 38 पर दोबारा आते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी इस प्रकार 2 प्रकार का व्यवहार का, अभी व्यवहार के भी 2 प्रकार बताए, यानी कब कब व्यवहार नय का कथन आता है। व्यवहार यानी वो बाकी व्यवहार नहीं, व्यवहार नय का कथन, वो व्यवहार नय का कथन है ऐसा कब कहने में आएगा? तो एक पॉइंट क्या है, प्रयोजनवश यानी किसी हेतु से। क्या कह रहे हैं, एक देश को यानी शुभ भाव को सर्व देश रूप कहना यानी यथार्थ धर्म कहना यानी उसको धर्म कहना। हाँ, उपचार को धर्म कहना, क्यों कि वो तो है नहीं लेकिन वो धर्म ही है ऐसा कहना, तो क्या कहते हैं, एक देश को सर्व देश रूप कहना
यानी राग को धर्म कहना,
बस इन शॉर्ट। एक पॉइंट हो गया, ये कैसा कथन है, तो कहते ये व्यवहार नय का कथन है। दूसरी कौन सी बात है, प्रयोजनवश यानी कभी कभी क्या होता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में आरोप करके कथन करना। यानी क्या, कुमार ने घड़ा बनाया, कुमार तो कभी जिंदगी में घड़ा नहीं बना सकता है, घड़ा बने तो किससे बनेगा, मिट्टी से ही बनेगा। वैसा उन्होंने इसी लाइन में जरा ऊपर आना, एक 5 लाइन छोड़कर ऊपर, निमित्त के कारण उपादान में कार्य होता है ऐसा कहना, इसी का अर्थ क्या किया, एक वस्तु में अन्य वस्तु के आरोप का कथन। यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब इसके लिए 4 पॉइंट उन्होंने बताए थे,
धर्म की 4 प्रकार से परिभाषा बताई थी, किसको याद है? हाँ, वस्तु स्वभाव धर्म एक हुई, दूसरी दशलक्षण रूप धर्म, तीसरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म, और चौथी जीव दया धर्म, जिसको हम अहिंसा परमो धर्म भी कहते हैं। तो इस तरह से ये धर्म की जो यथार्थ धर्म की जो 4 प्रकार से प्ररूपणा है, तभी उस यथार्थ धर्म के साथ साथ वहाँ जो राग भाव है उसको भी व्यवहार से धर्म कहेंगे। यथार्थ धर्म की ये परिभाषा बताई, फिर भी उसका भेद करके 4 प्रकार से प्ररूपण है। यथार्थ में तो एक ही है, वीतरागता ही धर्म है, उसका कथन ये अलग अलग 4 प्रकार से है, कथन 4 प्रकार से अलग अलग किया है, फिर भी धर्म तो वही है, उसको समझाने के तरीके 4 प्रकार है। अब उसमें जो व्यवहार का ये जो कथन होता है वो 38 पेज पर उन्हीं 4 धर्मों में ये 4 कथन किए। देखो 38 में नीचे अभी जो 2 लाइन पढ़ी थी उसके नीचे फिर 1, 2, 3, 4 लिखे, तो वस्तु स्वभाव धर्म कहने में आवे तब यथार्थ में क्या समझना, निर्विकार विकार रहित चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप, यानी जो शुद्ध परिणाम का साधन यानी शुद्ध उपयोग के साधन रूप ऐसे, निमित्त रूप ऐसे यानी उसके साथ जो अन्य होते हैं इसे, मंद कषाय रूप शुभ परिणाम को व्यवहार धर्म कहा जाता है, व्यवहार से धर्म कहा जाता है। यानी निश्चय धर्म कोई अलग है और व्यवहार धर्म अलग है, ये नहीं, इनको धर्म कहना ये व्यवहार है, फिर भी शॉर्ट में ये कथन पद्धति कह देते उसको व्यवहार धर्म कहा। व्यवहार से धर्म का ऐसा होना चाहिए वास्तव में।
उसी के आगे की लाइन ऐसी है, शुद्ध परिणाम तो निश्चय धर्म है और उसके साथ के शुभ परिणाम को धर्म कहना वह व्यवहार धर्म है, व्यवहार है। ये ख्याल में आई बात? ऐसा ही हमने कल चार पॉइंट देखे थे, अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे क्या? अभी समझना है, फिर से चाहो तो पढ़ेंगे हम।
देह की क्रिया को भी व्यवहार का व्यवहार हो गया वो ख्याल है, उसको भी व्यवहार नाम देंगे ना? उसके नाम देने की कोशिश मत करो, उसके उसको व्यवहार इतना समझो ना अपने। यहाँ उसको भी व्यवहार कहने में आता है, क्योंकि जहाँ बस शुभ राग ही है और कुछ देह की क्रिया ही नहीं हो रही, ये भी बात नहीं है। शुभ राग के साथ ऐसा ही देह की क्रिया का सुमेल होता ही है। अकेले वो शुभ भाव चल रहे और बाह्य में कुछ नहीं है ऐसा भी नहीं है, देह की भी वैसी ही क्रिया होगी। यानी 28 मूल गुण पालन करने के शुभ राग तो है, परंतु बाहर में नग्नता नहीं है ऐसा तो नहीं ना, तो देह की भी वैसी अवस्था होती है, इसलिए उसको भी उपचार से धर्म कहेंगे।
अभी जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर है 39 पेज पर निचला पैराग्राफ आखिर का। इस प्रकार धर्म का कथन दो प्रकार से है, निश्चय और व्यवहार। हाँ, ये तो कोई आपसे कंसर्न नहीं। अभी क्या कहते हैं, निश्चय सहित ही व्यवहार होता है, निश्चय रहित व्यवहार तो सच्चा व्यवहार भी नहीं है। आपका प्रश्न ऐसा था कि द्रव्यलिंगी मुनि तो 28 मूलगुण तो यथोचित पालन करते हैं, तो इनका इतना सारा जो कोई मेहनत है फुकट गई ना, उनकी मेहनत ही है वो तो होना है तो सहज रूप से होता है, लेकिन अभी उनके क्या है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है ना। तो मैं शुभ भाव कर सकता हूँ, शुभ भाव करने ही चाहिए और उसी से मेरे को धर्म की प्राप्ति होती है, ऐसा मानते हैं। अरे मुनियों की तो बात छोड़ो, हमने तो ऐसे लोगों से ये बात सुनी है कि जो 28 मूलगुण पालन करते हैं उनको तो डेफिनेटली पहले से सातवां गुणस्थान ही प्राप्त होता है। क्यों सब, कारण क्या है? अरे वो 28 मूलगुण पालन करते हैं ना, तो मूलगुण पालन करने के लिए फिर सातवें गुणस्थान में जाने की जरूरत क्या है? है उधर ही सातवां मानो ना पहले में। नहीं समझा? देखो देखो, जो 28 मूलगुण पालन कर रहे मिथ्यात्व में है, तो उनका मानना ऐसा है, कहना ऐसा है दृढ़ता पूर्वक कि वह जीव डायरेक्टली सातवें गुण स्थान में ही जाएगा, शुद्ध उपयोग करेगा।
उनका ऐसा कहना है कि जो बाहर में महाव्रत का अंगीकार जिसने किया है और जो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जीव शुद्धोपयोग में जाएगा तो निश्चित रूप से सातवें में ही जाएगा। क्या ये बात सही है अश्विन भाई? हाँ, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो, पर नॉट बिकॉज ही बाहर अंगीकार किया है, वो कुछ कारण नहीं हो सकता।
देखो ऐसी भी बात हो सकती है, पहले से बाह्य में तो 28 मूलगुण पालन यथोचित चल रहा है वो पहले पक्की बात रखना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक वितरकता होगी, किसी को दो कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक वितरकता होगी। वो बाहर में 28 मूलगुण पालन करता है इसलिए उसको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक वितरकता वाली तो बात होगी ही, ऐसा हम नियम नहीं कर सकते।
क्योंकि जब हमारी चर्चा हुई थी तो मैंने कहा कि यदि ऐसा है तो सातवें से छठे तो आवे, तो फिर वो जीव बाहर में व्रतादि का पालन करते हुए समय दृष्टि तो है, तो वो चौथे और पांचवें में क्यों आता है? क्योंकि गिर के आता है ये तो बात हमने देखी, तो नहीं निचरते समय तो सातवें में ही चले जाते और बाद में चौथे पांचवें तक आ सकते है। ये बात बराबर बैठती
है, कन्विंसिंग नहीं है।
इस बात पर तो बहुत चर्चा
उनकी, उनका हट ऐसा है कि चूंकि वे 28 मूलगुण पालन करते हैं उससे वे सातवें में जाएंगे, यानी शुद्धोपयोग से सातवें में जाएंगे, वो बात को वो मानने को तैयार नहीं। यहाँ शुभ भाव जो चल रहा है उसके कारण ऊपर के गुणस्थान में जाएंगे। हमने तो एक ने अनेकों बार सुना भी है कि जीव ऊपर के गुणस्थान में जाता है वह तो शुद्धता के कारण जाता है, ना कि शुभ के कारण। और शुभ के कारण ही जाता होगा तो फिर ऊपर जाने की जरूरत क्या है? पहले में ही तू 28 मूल गुण पालन कर रहे हैं तो सातवें जैसा हो गया कि नहीं तुम्हारे हिसाब से? यानी वो शुद्धोपयोग को कोई मायना नहीं रखते। ये बात ख्याल में आई अभी? देखो भाई, ऐसा है ना कि कहीं कहीं सूक्ष्म बातों में कुछ कहीं मान्यता में गड़बड़ी रह जाती है और चल रहा है, चलता है सब।
हाँ, उसको तो कहेंगे ही नहीं क्योंकि उपचार कब होगा? आपका कहना ऐसा है, मिथ्या दृष्टि जो 28 मूल गुणों का पालन करता है तो उसके तो महाव्रत कहेंगे ही नहीं, उसको तो अविरत गुणस्थान कहेंगे, असंयत कहेंगे। हाँ, इसी बात पर हमारी बहस हुई थी कि वो उसके व्रत तो है ना,
हमने झगड़ा नहीं, चर्चा नहीं, गुजराती में बहस आने, हिंदी में बहस
होना है नहीं, चर्चा। उनका कुछ कहना है और हमारा कुछ कहना है तो उस पर चर्चा करनी, ये बात ऐसी नहीं है, वो ऐसी होनी चाहिए। और ऐसे एक दो से बहुत सारे हम लोग बैठे थे, फिर उन्होंने आखिर में स्वीकार किया कि ये जो जितने कषाय चोकड़ी का अभाव होगा उतने उसके गुणस्थान होंगे उसके। और ये भी बात नहीं होती कि चौथे और पांचवे को टच करते करते सातवें में गया, ऐसा भी नहीं है। जो जाएगा तो सातवें में डायरेक्ट जाएगा, क्योंकि उसके जितने अभी ये विषय यहाँ का नहीं है, परंतु पहले से सातवें में जाने वाले की जो स्थिति कांडक घात होते हैं, जो विशुद्ध होती है, वो ज्यादा है। पहले से पांचवें में जाने वाले की अलग है, पहले से चौथे में जाने वाले की अलग है, उसके विशुद्धि के अनुसार उसका गुणस्थान वहां पर होगा। आगे
अभी हम 40 नंबर के पृष्ठ पर आएंगे, वहां देखो दूसरी लाइन में क्या लिखा है। डॉक्टर साहब, जो राग को ही धर्म मानता है उसे तो राग की ही अखंडता है, यानी राग में एकत्व बुद्धि है, यानी राग रूप ही मैं हूं, ऐसी उसकी अखंड बुद्धि है, मतलब मान्यता ऐसी है। बुद्धि यानी यहाँ मान्यता ही लिखा ना, राग को धर्म ही मानता है। आगे लिखते हैं, राग से आत्मा का भेद किया नहीं, भिन्नता जानी नहीं, राग के साथ ही एकता है, अर्थात उसको अनंत संसार के कारण रूप अनंतानुबंधी राग है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।
राग और ज्ञान का जो भेद ज्ञान होना चाहिए वो उसको नहीं। आप पूछ रहे थे ना, द्रव्यलिंगी इतना करता है तो फिर क्या होता है? उसको कर रहा है, वहां राग है उसके, परंतु वो राग से एकत्व चल रहा है। ज्ञान की और राग की जो भिन्नता होनी चाहिए, स्वामी जी ने कितनी बार देह से मैं भिन्न हूं कहने वाले तो पूरी दुनिया है, अन्यमति भी कहते हैं आत्मा जुदे और देह जुदा है, परंतु उस आत्मा को हमको अहम उसमें स्थापित करना है जो राग से भिन्न है, वो बात ख्याल में नहीं आती उनके, वो पकड़ नहीं पाते उसको। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते ऐसी कोई बात है, परंतु वो बुद्धि में नहीं ग्रहण हो पाती और उनका वही भेद ज्ञान के बिना ही उनका सब आचरण चलता रहता है।
हाँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो कल की बात आज फिर से पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने 3-4 लाइन तो पढ़ ली। चौथे लाइन में लिखा है ना, कारण रूप अनंतानुबंधी राग है, उसका वो पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया था हमने, लेकिन फिर भी हमारी कहीं कहीं मान्यता में थोड़ा सा गड़बड़, मतलब समझने में, मान्यता नहीं समझने में कुछ कचास रह गई है। देखो क्या कहते हैं, चौथी लाइन के आखिर में पढ़ रहा हूं मैं, आत्मा स्वभाव से एक समय में अखंड पूर्ण है, उसकी प्रतीति न करके जिसने राग से लाभ माना उसको राग की ही अखंडता है। उसने तो राग को ही सर्वदेश धर्म, अब ये सर्वदेश धर्म का अर्थ क्या किया, निश्चय धर्म, वास्तविक धर्म मान लिया है। अर्थात उसको राग रहित आत्मा के चैतन्य स्वभाव की भी श्रद्धा नहीं है। उसको तो अकेला राग रूप अखंडपने राग रूप परिणमन है। उस पर्याय मूल जीव को तो राग ही सर्वदेश है, यानी राग ही धर्म है। अभी हम निश्चय धर्म है, एक देश भी धर्म उसको नहीं है। अभी आपने बोला ना कि 28 मूलों महाव्रत तो है उसके, वो तो नील एकड़ा बिना ना मिंडा बोलते हैं ना गुरुदेव। तो क्या लिखा, एक देश भी धर्म उसको नहीं, यानी जो हम शुभ राग को उपचार से धर्म कह रहे थे वो उपचार भी यहां लागू नहीं, क्योंकि निश्चय नहीं ना, तो निश्चय नहीं है तो उसके ऊपर आरोप किस पर करेंगे उपचार का। क्या कहा, देखो देखो, उस पर्याय मूल जीव को, पर्याय मूल जीव क्यों कहा कि जो पर्याय में राग हो रहा है उतना मैं हूं, मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञान स्वभावी चैतन्य स्वभावी हूं, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है और होगी तो मान्यता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं उस पर्याय मूल जीव को तो राग ही सर्वदेश है, एक देश भी धर्म उसको नहीं है, धर्म का भान भी उसको नहीं है। जाओ, अर्थात उसके राग पर तो एक देश धर्म पने का आरोप भी संभव नहीं है। यानी उसको हम उपचार से भी धर्म है ऐसा बोल नहीं सकते भाई। उसको राग के साथ एकत्व बुद्धि, ये बुद्धि का अर्थ एकत्व की मान्यता होने से राग की ही अखंडता है और वही अधर्म है। धर्म तो छोड़ो, मिथ्यात्व है। अब कल से थोड़ा सा कुछ खुल गया ना भाई, कोई चिंता नहीं करो, नहीं आवे तो पूछना। हो मैंने क्या समझा कि ये अपनी बहुत बार बातें हुई ना, तो मैं समझा चलो 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 आगे जाएंगे। ठीक है, अभी जो है सो है, नई मामा से काना मामा अच्छा। अभी आप नया मामा लाना तो फिर देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञानी को अखंड चिदानंद स्वभाव का भान है। अभी तक तो यहाँ अज्ञानी की बात करी, अभी ज्ञानी की तुलना कर रहे हैं। ज्ञानी को अखंड चिदानंद स्वभाव का भान है और राग का खंड यानी भेद पड़ गया है। यानी क्या कहते हैं, राग को उन्होंने जुदा किया है, राग रूप में नहीं हूं ऐसी उन्होंने खातरी रखी है। तो राग का भेद पड़ गया है, उसको राग के साथ एकत्व बुद्धि टूट गई है। अर्थात वह यानी ज्ञानी राग को धर्म नहीं मानता, अखंड स्वभाव की अखंड दृष्टि होने से अनंत संसार के कारण रूप राग, यानी कौन सा अनंतानुबंधी राग, ये ऊपर से देखो चौथी लाइन में 40 पेज के, अनंत संसार के कारण रूप अनंतानुबंधी राग है। यहाँ क्या कह रहे हैं, अनंत संसार के कारण रूप राग यानी कौन सा अनंतानुबंधी वाला खंडित हो गया है, अल्प राग रहा है। देखो ये अनंतानुबंधी गया ना, तो ये राग का सरदार निकल गया, तो अभी बाकी कैसा है, अल्प रह गया है। ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि जो है ना, वो अल्प है। क्यों साहब ऐसा क्यों कह रहे, अरे अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन रहने वाले हैं ये वापस क्यों नहीं जाए दोबारा अपने अनंतानुबंधी के पास, वो उसको भी सरपास करने वाला है। तो कह रहे हैं
पुद्गल परावर्तन में फिर दोबारा उसमें जाएगा
ना, अनंतानुबंधी के पास जावे फिर भी उसको पास जावे बताए ना अभी, तो उसको भी सरपास करने वाले हैं। इसलिए कहा थोड़ा टाइम है, अल्प राग रहा है। अभी जिसके सम्यक दर्शन चालू है उसके जो राग रहे वो अल्प राग है। ज्ञानी को शुद्ध चेतना रूप धर्म वर्तता है, और साथ ही राग भी वर्तता है, उस राग को उपचार से एक देश धर्म कहा जाता है। यहाँ तो अभी अच्छी तरह से अभी ख्याल में आ गया ना, देखो 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 क्या कहते हैं, ज्ञानी को शुद्ध चेतन चेतना रूप धर्म वर्तता है, यानी सर्व देश रूप धर्म वर्तता है, और साथ में राग भी वर्तता है, उस राग को उपचार से एक देश धर्म कहा जाता है। अभी ये बात थोड़ी सी आ गई ख्याल में बहन, आत्मा की शुद्ध चेतना रूप परिणति में तो सर्व देश धर्म है, अर्थात साक्षात धर्म है, वह तो निश्चय से धर्म है, और वहाँ साधक को व्रतादिक का जो राग साथ ही वर्तता है, उस शुभ राग में अशुभ राग के अभाव की अपेक्षा से एक देश धर्म का आरोप करके उसको धर्म कहा है, वह व्यवहार है, यानी वो धर्म व्यवहार है नहीं, ये कथन के उसको धर्म कहना वह व्यवहार है। व्यवहार में यानी धर्म में, धर्म के व्यवहार में धर्म के अनेक प्रकार हैं, वो हमने जो चार देखे इसलिए उसको हमने कहा, जहाँ स्वभाव में अखंडता होकर राग का अखंड हो गया, वहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों यथार्थ हुए। ये यथार्थ कब कहा जाएंगे कि स्वभाव जैसा चैतन्य स्वरूप है उसमें उसकी एक एकाकार हो गया वो, और राग से जुदा पड़ गया, तो निश्चय भी यथार्थ है और व्यवहार भी यथार्थ है। किंतु जहाँ अखंड स्वभाव की दृष्टि हुई नहीं और राग का खंड पड़ा नहीं, यानी राग जुदा हुआ नहीं, वहाँ तो
यानी राग से भेद ज्ञान जिसने
नहीं हुआ, वहाँ तो निश्चय या व्यवहार दोनों में से एक भी यथार्थ नहीं है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार से धर्म का स्वरूप कहा। अभी ये जो बात है ना, राग का खंड पड़ा नहीं, तो ये वाक्य वहाँ देख लेना भाई, इसके लिए क्या गुजराती में वापरा है, और हो सके तो लाना उसको इधर, कभी जाएंगे पक्का, क्या हमें जैसा वादा नहीं, ये क्योंकि धर्म की बात है भाई, अपने को कंफर्म करना है ना, तो हम भूल जाएं उसके पहले। वहाँ धर्म का एक स्वरूप और अनेक स्वरूप कहने से स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता, क्योंकि साधक को निर्मल पर्यायों के अनेक प्रकार होने पर भी वे सभी पर्याय निर्मल स्वभाव के साथ ही अभेदता को पाती है, अतः उसमें तो एक ही प्रकार कहा, और साधक को राग भिन्न भिन्न अनेक प्रकार का होता है, अतः व्यवहार धर्मों के अनेक प्रकार कहे हैं। क्या कहा, देखो ये साधक जो है, साधक किसको कहेंगे, जिसके सम्यक दर्शनों के जो आगे बढ़ रहे हैं चौथे गुणस्थान से आगे, तो उसके भी ब्राग कैसे हैं, जुदे जुदे प्रकार के हैं, इसलिए कहते हैं वो अनेक प्रकार का होने के कारण व्यवहार धर्म को भी अनेक प्रकार से कहने में आता है। स्वभाव में एकता रूप निश्चय धर्म एक ही प्रकार का है, बीच में साधक दशा में शुभ राग रूप व्यवहार धर्म अनेक प्रकार का है।
अभी हमने देखा था ना, अभी पढ़ रहे थे हम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, प्रायश्चित जो है, प्रायश्चित वाला, तो प्रायश्चित जो है वो तो अनेक प्रकार से उसका कथन किया, वो कथन में अनेक प्रकार आए, वो तो व्यवहार हो गया, व्यवहार से हुए, परंतु निश्चय से तो प्रायश्चित तो सभी व्यवहार से 10 भेद कहे या जो अनेक भेद किए, फिर भी निश्चय से तो अंतरंग में स्थिरता स्वरूप स्थिरता ही वो निश्चय प्रायश्चित है। यही बात यहाँ कहते हैं, स्वभाव में एकता रूप निश्चय धर्म एक ही प्रकार का है, जिसे दश लक्षण धर्म भी जो 10 लक्षण बताए और उसका जो वर्णन आता है तो व्यवहार के अपेक्षा से वर्णन आता है, शुभराग की अपेक्षा से वर्णन आता है, निश्चय तो क्षमा कहो आजो मार दो सब जो है वो अंतरंग में स्थिरता ही है। यही बात यहाँ बताते हैं।
हाँ अभी देखो यहाँ क्या कह रहे, इस प्रकार धर्म को एक स्वरूप तथा अनेक स्वरूप कहने से स्यादवाद के साथ विरोध नहीं किंतु विवक्षा से सब प्रमाण सिद्ध है। यानी अलग अलग अपेक्षा से जो कथन किए हैं इसलिए जो कुछ उन्होंने बातें बताई वो सिद्ध होती है। देखो यह अष्टपाहुड़ भी महान शास्त्र है, देखने में यह पुस्तक छोटी लगती है किंतु आचार्य भगवान ने इसमें महान भाव भर दिए हैं। सर्वज्ञ भगवान का यथार्थ मार्ग क्या है वह आचार्य देव ने इसमें स्पष्ट किया है। जैन मत में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म की मूर्ति वह दर्शन है। अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो और बाहर में भी एकदम दिगंबर शांत मुद्रा हो, ऐसी मुनि दशा है। ये मुनियों की अपेक्षा से कथन चल रहे हैं, हो ना? इसके अतिरिक्त सिर पर पोट और साथ में मजदूर बाबरे लेकर फिरते हो। सिर पर पोट यानी क्या? बोझा? अच्छा ठीक है।
ये क्या पोटला क्या? हाँ वो हाँ ये सब कुछ न कुछ उसमें भरा हुआ होता है सर। हाँ
ये, अच्छा ये तो श्वेतांबर मुनियों के लिए करने वाले ना उनको शायद ये शब्द को मालूम नहीं होगा। ठीक है ना, तो वही तो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिर पर पोट और साथ में मजदूर लेकर फिरते हो, ऐसी मुनि दशा जैन मत में नहीं होती। जैन मत में तो अंतर्बाह्य में उपशांत दिगंबर दशा हो, ऐसी ही मुनि दशा है जिसे देखते ही ऐसा लगे कि अहो यह जैन धर्म की मूर्ति। ऐसे मुनिवरों को जैन मत में दर्शन कहा है। क्या कहा? मुनिवर जो है उनको ही दर्शन कहा है। ले ये दर्शन पावड़ की बात चल रही ना। ऊपर जो निश्चय व्यवहार रूप जैन धर्म कहा, ऐसे धर्म की जो श्रद्धा यानी प्रतीति और आचरण करता है वह दर्शन अर्थात मुनिराज ही दर्शन है। जैसे हाथी पर चक्रवर्ती चले जा रहे हो, वैसे ही जो अंतर स्वभाव के ऊपर चढ़कर मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे मुनिवर तो मानो हिलता चलता जैन धर्म है। साक्षात जैन धर्म हो तो वे ही है जिनका झुकाव आत्म स्वभाव में हो गया है और परतरफ का उत्साह ही टूट गया है, ऐसे दिगंबर मुनि जैन धर्म का दर्शन है। वे ही जैन मत है, वे जैन धर्म की मूर्ति है और वे ही धर्म का मूल है। जिसको ऐसे मार्ग की प्रतीति नहीं, ऐसी धर्म की श्रद्धा ज्ञान नहीं, उसको धर्म का आचरण भी नहीं होता। सर्वप्रथम ऐसा ही जैन मार्ग है, ऐसा ही जैन दर्शन है, ऐसे धर्म की यथार्थ श्रद्धा होना ही सम्यक दर्शन है। जिसकी श्रद्धा ही सच्ची नहीं है उसको धर्म नहीं होता। जैसे वृक्ष की जड़ के बिना तना इत्यादि नहीं होते। तना यानी समझे शाखाएं झाड़ के, वैसे ही धर्म की यथार्थ श्रद्धा के बिना धर्म रूपी वृक्ष नहीं होता। इस प्रकार दर्शन अर्थात क्या यह व्याख्या की है। अब ऐसे दर्शन का वर्णन सिद्धांत में जिस प्रकार है उसी प्रकार यहाँ कुछ कहते हैं। वहाँ अंतरंग सम्यक दर्शन वह तो जीव का भाव है, भाव अर्थात पर्याय। प्रश्न, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ऐसे चार बोल में से यह भाव किसमें आया, जीव का भाव है कहा, तो उन्होंने कहा ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये भाव को भाव से लगाया ना, ऐसे चार बोल में से ये भाव किसमें आया, जीव का स्वकाल अर्थात स्वपर्याय में, स्वपर्याय उसमें यह भाव आता है, अर्थात सम्यक दर्शन रूप जो भाव है वह जीव की निर्मल पर्याय रूप स्वकाल है, यह निश्चय सम्यक दर्शन रूप भाव ही, भाव एक ही प्रकार का है, उपाधि रहित शुद्धात्मा के साक्षात अनुभव रूप एक ही प्रकार का निश्चय सम्यक दर्शन है, उसमें कर्म की उपाधि नहीं, निमित्त की उपाधि भी नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन भाव ही धर्म है, किंतु ऐसा सम्यक दर्शन अनादि से जीव को नहीं है, मिथ्या दर्शन है, यह बात यहाँ बताते हैं। यानी ये अंतरंग सम्यक दर्शन यह तो जीव का भाव है, ऐसी जो बात बताई है, तो यहाँ बताने में उनको बताना था कि वह जीव का स्वयं का परिणमन है, वो पर्याय जो है जो सम्यक रूप से परिणमित हो रही है उसको यहाँ भाव कहा। तो वो प्रश्नकार ने तो और अन्य कुछ पूछा, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से ये कौन सा है, तो कहते वो स्वकाल है, क्योंकि परिणत हुआ है ना, तो जो स्वकाल है वो उसमें यह भाव आता है, भाव आता है यानी यह उसकी पर्याय है, जिस समय वह आत्मानुभूति कर रहा है या उसके सम्यक परिणमन हो रहा है, अंतरंग का स्वभाव परिणमन हो रहा है, तो वह उसका स्वकाल है और इस समय यह पर्याय होती है। इसलिए कहते ना सेकंड लाइन में उत्तर में, सम्यक दर्शन रूप जो भाव है वह जीव की निर्मल पर्याय रूप स्वकाल है। आगे अगला पैराग्राफ, मिथ्या दर्शन नामक कर्म के उदय से अर्थात विपरीत रुचि के कारण उस उदय में जुड़ने से अनादि काल से जीव को विपरीत अनुभव हो रहा है। देखो यहाँ उपादान की भी बात की और निमित्त को भी बताया, पहले में पहले निमित्त को बताया, क्या हुआ कि मिथ्यात्व नामक मिथ्या दर्शन लिखा है, कर्म का उदय ये है निमित्त, और फिर क्या कहते हैं विपरीत रुचि के कारण यह जीव उस उदय में जुड़ जाता है, कब से, तो कहते हैं अनादि काल से, इसलिए उसको विपरीत ही अनुभव हो रहा है, यानी है तो स्वयं जीव और जो शरीर है उस शरीर को अपने रूप मान रहा है, विपरीत मान्यता चल रही है। जीव शुद्ध स्वभाव का अनुभव न करके व्यवहार राग आदि की रुचि करके उनमें ही अनुभव से, उनके ही अनुभव से मिथ्या दृष्टि हो रहा है। प्रथम तो ऐसा मिथ्यात्व अनादि काल से है, किंतु कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके पुनः विपरीत रुचि से मिथ्या दृष्टि बन जाए तो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि ऐसे दो प्रकार हैं। उनमें सादी मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति सत्ता में होती है। अभी ये तो करना नियोग तो हमने बहुत बार पढ़ा है, तो बात समझ में आती है ना, और उनके साथ अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग रूप चार कषाय प्रकृतियां होती हैं, ये भी मिथ्यात्व की सहचारिणी है। क्या कहना चाहते हैं, मिथ्यात्व की सहचारिणी है, यानी मिथ्यात्व क्या करता है, सम्यक दर्शन होने नहीं देता है, तो ये अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग भी क्या करते हैं, सम्यक दर्शन को तोड़ देते हैं। ऐसा कब हमने देखा कि अनंतानुबंधी के कारण सम्यक तो टूट गया, हाँ मिली भाई, हाँ क्या होता है वहां पर, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यानी आप बोलते थे ना हम प्रॉम्प्टिंग करते, नहीं वही मेरे को करते थे। चलो कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो, अभी ऐसा जो कुछ भाव होता है वो कौन से सम्यक्त्व में होता है, क्षायिक सम्यक्त्व में या क्षपक्षम सम्यक्त्व में? अवक्षम, इतनी तो बात हम जानते हैं बिल्कुल। तो इसलिए इस मिथ्या, इस अनंतानुबंधी को भी सहचारिणी कहा। अलौकिक में सहचारिणी किसको कहते हैं? जो अपने साथ साथ रहते हैं, यानी खास करके अपनी पत्नी जो होती है। तो ये भी दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी होगा या खाली अनंतानुबंधी भी होगा तो मिथ्यात्व को तोड़ता है, सम्यक्त्व को तोड़ता है, मिथ्यात्व को नहीं। इस प्रकार सम्यक दर्शन के घात में ये सातों प्रकृतियां निमित्त कारणे हैं। ये गुजराती आया निमित्त, हाँ ऐसा है,
टोटल घात नहीं लेना उसका। चलो मल आगे दोष उत्पन्न करते हैं ना, उसका नाम भी दर्शन मोहनीय ही है।
अभी ये किसकी बात चल रही, सादी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही ना? आपका जो प्रश्न है सातों में सम्यक प्रकृति को भी वो मिथ्यात्व का घात करती है, वो सादी मिथ्या दृष्टि के सत्ता में सात प्रकृतियां है। अभी उन्होंने पहले क्या बताया था, अनादि और सादी ऐसे दो मिथ्यात्व के भेद बताए, तो उसमें से अभी यहाँ सादी की बात कर रहे हैं। सम्यक स्वभाव की रुचि होने पर इन सातों प्रकृतियों का उपशम होकर जीव को उपशम सम्यक दर्शन होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि के पांच प्रकृतियों मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया और लोभ सत्ता में होने से पांच का ही उपशम होता है, और पहले के क्या है सात का उपशम बताया ना, सत्ता में थे। सम्यक दर्शन होने में तथा इन मिथ्यात्वादी प्रकृतियों के उपशम होने में बाह्य कारण क्या है वह कहते हैं। अभी यहाँ तो बिल्कुल कर्णानियोग का विषय ही चल रहा है। बाह्य कारणों अर्थात निमित्तों में सामान्यपने जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उनमें मुख्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव कौन से है यह बतलाते हैं। द्रव्य, द्रव्य में प्रधान कारण साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन आदि है। तीर्थंकर भगवान, गणधर, मुनि या धर्मात्मा, इन सभी का दर्शन यहाँ पर लेना ये बाह्य कारण है, जो जीव के अंतर में आत्मा के स्वभाव की रुचि रूप अंतरंग कारण से सम्यक दर्शन प्रकट करे उसको ही उक्त बाह्य पदार्थ बाह्य कारण रूप में कहे जाते हैं। अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को किस तरह से अप्लाई करना उसकी बात बता रहे हैं। क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा से प्रधान कारण समोसरणाधिक है तथा देवों को नंदीश्वर आदि क्षेत्र जहाँ शाश्वत जिन प्रतिमा विराजमान है वह बाह्य कारण है। यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि समोचरण के क्षेत्र में जाए उसे निश्चय सम्यक दर्शन होता ही है, किंतु जो जीव वहाँ अपने स्वभाव के अंतरंग उपादान कारण से सम्यक दर्शन प्रकट करे उसके लिए समोसरणाधिक बाह्य कारण कहे जाते हैं। काल, काल अपेक्षा से अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार उत्कृष्ट में उत्कृष्ट बाकी रहे वह प्रधान कारण है। यह भी निमित्त कारण की बात है, जो अंतर में स्वभाव की दृष्टि से भव का अंत करे उसके ऐसा निमित्त कहा जाता है। किसी को मात्र अंतर्मूर्त ही संसार बाकी बचा हो वह भी सम्यक दर्शन प्रकट करता है। हम तो हमेशा क्या बात करते हैं, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रखड़ेगा रखड़ेगा, यानी अर्लीएस्ट जो होता है वो जिसके अर्ध पुद्गल परावर्तन बाकी उसको सम्यक दर्शन होगा। और कई को क्या होता है, अभी बस मोक्ष जाने के लिए एक अंतर मुहूर्त टाइम बाकी है, वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करके अंतर मुहूर्त में चला जाएगा। भाव अपेक्षा से अधप प्रवृत्त करण परिणाम है, सम्यक दर्शन पाने वाले जीव को पहले अमुक प्रकार के परिणाम होते हैं, उन्हें अधप प्रवृत्त करण कहते हैं, वे भी निमित्त है। अपनी पूर्व पर्याय के भाव को भी यहाँ निमित्त रूप से लिया गया है। इस प्रकार
एक्चुअली मूल में अधप प्रवृत्त करण आदि लिए थे, क्योंकि अकेले अध प्रवृत्त करण को नहीं लेना, तीनों ही करण परिणाम को लेना है। ये जो मूल भावार्थ जो जयचंद जी का है पेज नंबर 15 पर लेना, नहीं 14 पर, नीचे से तीसरी चौथी लाइन, भाव में अध प्रवृत्त करण आदिक है। वो अनेक वचन है ना, है
इस प्रकार मुख्यपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सम्यक्त्व के निमित्त बताए। अब इनके अतिरिक्त तो अन्य भी विशेष निमित्त है, वे कहते हैं वह कहते हैं विशेषपने बाह्य कारण अनेक प्रकार के हैं। कितने ही जीवों को अरिहंत भगवान की प्रतिमा का दर्शन होना निमित्त कारण है, जो हार मुकुट आभूषण सहित हो वह अरहंत की प्रतिमा नहीं है और न वह सम्यक्त्व का निमित्त है। भगवान की वितराग प्रतिमा सम्यक्त्व का निमित्त है, किंतु किसको, जो जीव सम्यक दर्शन प्रकट करे उसको। इसके अतिरिक्त जिनेन्द्र भगवान ने पंचकल्याणक जन्म दीक्षा इत्यादि का दर्शन होना भी बहुत से जीवों के सम्यक तो होने का निमित्त है। जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तब दूसरे जीवों को ऐसा लगता है कि अहो यह मार्ग कैसा, कैसे महापुरुष जैसे भी दीक्षा लेते हैं, ऐसे महापुरुष जैसे भी, क्या ये हिंदी कुछ अटपटा है ना,
यानी महापुरुष जैसे पुरुष भी दीक्षा लेते हैं,
महापुरुष
वो राजा चक्रवर्ती आदि होते हैं वे भी दीक्षा लेते हैं,
कि ऐसे महापुरुष जैसे भी दीक्षा लेते हैं। इस प्रकार जैन धर्म की महिमा आने से अंतर स्वभाव के आश्रय से सम्यक तो प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे जीवों को भगवान के पंच कल्याणकों का दर्शन सम्यक्त्व का निमित्त कहा जाता है। किंतु जो जीव सम्यक्त्व प्राप्त करे निमित्त उसी के लिए कहा जाता है। किसी जीव को जाति स्मरण ज्ञान भी सम्यक्त्व का निमित्त होता है। अकेले पूर्व भव का साधारण ज्ञान तो अनेक जीवों को होता है, किंतु जिसने अंतर में आत्मा के स्वभाव के साथ संधि करके सम्यक दर्शन प्रकट किया, ऐसे जीवों को वह जाति स्मरण ध्यान सम्यक्त्व का निमित्त कहा जाता है। अभी कहते वेदना भी निमित्त है, शरीर में तीव्र वेदना का प्रसंग हो वहां जहां अन्य कोई उपाय नहीं हो वहां भी सहनशीलता यानी ज्ञाता दृष्टापना यही एक उपाय है। उस सहनशीलता का क्या बताए, ज्ञाता दृष्टा बना ऐसा विचार कर अंतर न्यायिक स्वभाव में उतर जाए और सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, उसके वेदना आदि को बाह्य कारण कहते हैं। अकेली वेदना से कोई सम्यक दर्शन नहीं होता है। यदि वेदना से ही हो तो सभी नारकियों को हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। जो जीव स्वभाव के अंतर प्रयत्न से सम्यक दर्शन उत्पन्न करते हैं, उन सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, उनमें से किसी को वेदना भी निमित्त होती है। ये तो बाह्य कारण बता रहे ना, ये सब अभी तक हमने जो कोई बाह्य कारण देखे तो इसमें अंतरंग कारण क्या होगा? हाँ भाई, अंतरंग कारण स्वरूप में लीनता, यानी अंतरंग निमित्त कारण है वो स्वरूप में लीनता, तो उपादान कारण क्या है फिर? हाँ, स्वयं का उपादान है वो।
अंतरंग निमित्त पूछ रहे,
निमित्त कारण क्या है? आप बताएंगे बहन? देखो, अभी तक हमने क्या देखा? साक्षात तीर्थंकर का दर्शन, समोशरण, उनके कल्याणक आदि को देखना, किसी को केवल मूर्ति को देखना, किसी को वेदना से, किसी को अन्य प्रकार से, नंदीश्वर देव आदि को वहां भगवान की मूर्ति देखने, तो ये तो सब सम्यक दर्शन में बाह्य निमित्त कारण है। तो अंतरंग निमित्त कारण क्या होना चाहिए? हाँ, सच्चे देवगुरु शास्त्र की। अच्छा दिव्या बेन, आप कुछ कहना चाहते हैं? शांति करो। त्रिकाली ध्रुव आत्मा, यह अंतरंग निमित्त कारण। तो फिर उपादान कारण क्या है? देखो, चार हाथ तो कब से ऐसे ऐसे हो रहे हैं। हाँ, अब मैं किसको बोलूं? बहुत दिन से किसी को नहीं पूछा है, ऐसे हम जया बहन से पूछते हैं। क्या बताया? जिसने जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, चारों गति के जीवों की हम बात करेंगे, तो उसके क्या हुआ है? दर्शन मोहनी का वहां अनुदय है, ख्याल में? यानी किसी का उपशम है, किसी का क्षयोपशम है, किसी के और कुछ है, तो अपने क्षय है, चलो ना। तो मुझे क्या कहना है? ये अंतरंग कारण किसको कहना? हाँ, तो उसका अर्थ हम नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ बताते हैं। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन में श्रद्धा गुण की अपेक्षा से मिथ्यात्व को लेना। हाँ? भाई, बात ख्याल में आई? सुनना पहले, जो बाह्य निमित्त तो जुदे जुदे होते हैं, और अंतरंग निमित्त जिसको कहते हैं वो तो एक ही, यानी अवश्य जो होता है, जब जब किसी को सम्यक दर्शन होगा तब अंतरंग निमित्त क्या है कि दर्शन मोह कर्म का अनुदय। वो भले तिरंज गति का जीव हो, नरक का जीव हो, देव का हो या मनुष्य का हो, ख्याल में? तो अभी ये जो बात आपके ज्ञान में आई, उसमें अंतरंग निमित्त कौन है? हाँ बोलो। हाँ, अरे भाई, आपके ज्ञान में ये जो सही बात आई, हाँ, कौन? वो हमारे अश्विन भाई बता रहे हैं। हाँ, तो तुम धक्का देना चाहते हो? एक मिनट, मैंने क्या कहा? अभी हमने आपको कुछ बात बताई तो आपके ज्ञान में थोड़ा सा बढ़ावा हुआ, ऐसा हम समझते हैं। तो जो ज्ञान में कुछ जो कोई बढ़ावा हुआ, यानी आप कुछ जानने लगे, पहले नहीं जानते थे कि निमित्त कारण को किसको कहना, वो नहीं जानते थे, अभी आप जानने लगे, तो आप जानने लगे उसमें अंतरंग निमित्त कारण क्या है। योग्यता तो उसका उपादान कारण है बहन, मंदा लक्ष्मी बेन आप कहो। तुम अश्विन भाई का नहीं सुनते? वो बोलते मैं किदू केम नदी सांभर दो। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अच्छा है। ऐसा ही एकलव्य रहना चाहिए। हाँ द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना के बाण मारना चाहिए द्रोणाचार्य को। देखो भाई मैं फिर से कहता हूँ, अंतरंग निमित्त किसको कहना के जो नियम रूप से होते हैं। अभी तीरंज को भी ज्ञान का उगाड़ हुआ तो क्या हुआ? उगाड़ कब होगा कि उसके ध्यानावरण कर्म थोड़े मोड़ा पड़ी जाए, शू कहवा डीले हो जाए, उसका आवरण कम हो जाए, तो यहाँ ज्ञान बढ़ गया। तो हमें मालूम नहीं था निमित्त कारण किसको कहते हैं। हमारे ज्ञान में बात आई तो हमारा ज्ञान का उगाड़ हुआ यानी ध्यानावरण कर्म ओछा हुआ, तो ये ध्यानावरण कर्म का कम होना, आवरण के दिलाताना वह निमित्त कारण है, अंतरंग निमित्त कारण। अभी बात ख्याल में आई बहन? तत्समय की योग्यता बोल के ऐसा लपटाना नहीं हमको। हाँ आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा तो वेदना भी निमित्त है, वो तो हो गई। अभी इनमें एक बात उन्होंने ऐसी बताई कि वेदना होने से सम्यक दर्शन होता है, समझ समझो क्यों, नहीं तो सारे नारकियों को सम्यक दर्शन हो जाएंगे और हम ऐसे कोरे के कोरे रह जाएंगे। तो कहते हैं कि जिनके जिनके सम्यक दर्शन होता है उनमें से किसी को वेदना भी एक निमित्त कारण है, और वह जो वेदना नामक निमित्त कारण है उसको कैसा निमित्त कारण कहेंगे डॉक्टर? बहुत अच्छा, बाह्य निमित्त कारण। इतनी तो बात समझ में आई। अभी वो आज रात को पूरा उसको घूंट लेना और कल हम बात करेंगे। चावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मसकनमो सदा देता हो। अश्विन भाई